नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार ने चार धाम यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नागरिकों से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है।
नाम है वागेश लिंग प्रधान पुजारी। इस साल भगवान केदारनाथ जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान केदारनाथ जी का 7 बजे ठीक परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुल गया है। पूरा देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सबको ऊपर सदा रहे, सुखी रहे, शांति रहे।
मंदिर प्रांगण में मौजूद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने भी आवश्यक प्रबंध किए हैं।
यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं। यात्रा अच्छी होगी, हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का, सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में सम्पन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। ये हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो। और यहाँ पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है, और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास।
कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ मंदिर में भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पेयजल, विश्राम गृह, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा समेत सभी मूलभूत व्यवस्थाएं की हैं। पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदारनाथ श्री तुंगनाथ के कपाट आज सुबह 10:15 पर विधि विधान से खोल दिए गए। इस अवसर पर श्री तुंगनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर के पुजारी, हक हुकूकधारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा की परंपराओं के अनुसार बृहस्पतिवार को ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर में गरुण छाड़ मेला का आयोजन किया गया। इस धार्मिक परंपरा के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान्यता है कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान विष्णु गरुण में बैठकर बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। मेले का आयोजन देव पुजारी समिति की ओर से किया गया। देव पुजारी समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून की ग्राम पंचायत कंडोली में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन के उद्घाटन अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एक संस्था के रूप में मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के काम को सुचारू और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए उन्हें CUG सिम और मोबाइल भी दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती आर्य ने नंदा गौरा योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ये दोनों योजनाएं राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि आज जब हमारा देश तेजी से विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, तब प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हमें सिखाता है कि सामूहिक प्रयासों से ही देश की प्रगति संभव है। राज्यपाल ने देहरादून स्थित राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस समारोह में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराएं हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं। नैनीताल में सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, दिन रात पुलिस गश्त, सत्यापन अभियान और फ्लैग मार्च सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधिकारी ने नमाज स्थलों व संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, साइबर निगरानी बढ़ाने तथा भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थलों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले 36 घंटे प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 और 5 मई को प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मद्देनजर सभी को मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से हो रही बारिश से जंगलों में लगी आग बुझ गई है। मुंबई में 4 दिवसीय वेव्स शिखर सम्मेलन आज दूसरे दिन भी जारी है। वेव्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत आज पहली बार ग्लोबल मीडिया संवाद की मेजबानी कर रहा है। वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ग्लोबल मीडिया संवाद का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार ने चार धाम यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नागरिकों से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से संकल्पित होकर राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।